मेरा कमेंट ये है कि आजकल के ज़माने में जब हर दूसरा बंदा एथियस्ट है तो इस ज़माने में शिर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही आउटडेटेड और इररेलेवेंट फील होता है।
ठीक है
सर, दूसरी बात ये कि अगर हम उन वो सब लोग जिनका ताल्लुक ऐसे रिलीजन से हैं जहाँ मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, अगर हम उन लोगों को देखें तो उनकी लाइफस्टाइल में, फंक्शनिंग में, पर्सनालिटी में हमें किसी किस्म की कोई एबनॉर्मैलिटी या मैल फंक्शनिंग नजर नहीं आती है। इसका मतलब है शिर्क करना और ना करना हमारे लिए बराबर है और इसका हमारी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और सर फाइनली ये कि इस्लाम में शिर्क के ऊपर इतना एम्फेसिस है कि इससे हमारे सामने जो खुदा का तसव्वुर पैदा होता है वो एक जेलस, इनसिक्योर और नार्सिसिस्टिक गॉड का है जिसको सारा वक्त सिर्फ इसी बात की फिक्र लगी हुई है कि कहीं उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना किया जाए। सर मुझे बस बेसिकली इसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन चाहिए।
आखिरी बात के बारे में पहले जिक्र कर दूँ वो ये कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई किस स्कीम के तहत है, इसको बहुत अच्छी तरह पहले समझना चाहिए। ये दुनिया इस स्कीम पर नहीं बनी कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेज दिया, नेमतों भरी ज़िंदगी दे दी और फिर ये कहा कि इत्मीनान के साथ रहिए, मरिए और जिए और फिर यहीं दुनिया में ख़त्म हो जाइए। जब ज़िंदगी को इस दुनिया की ज़िंदगी के साथ और आखिरत के साथ आप मिलाकर देखते हैं तो ज़िंदगी बसीयत मजमूई उस वक्त सामने आती है। उस पूरी ज़िंदगी में जिस तरीके से हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं यहाँ पे, इसी तरह एक इस कायनात का खालिक भी है जिसने हमको पैदा किया है। तो अगर आप खालिक को एक ज़िंदा हकीकत के तौर पर अपने सामने रख कर देखते हैं तो ये कह रही है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, अगर मैं माँ के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दूँ इससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता, यार मुमकिन है कि मेरी माँ को किसी मेरे हुस्न सलूक की ज़रूरत ही ना हो। यानी मेरी माँ खाती है, पीती है, दूसरे बच्चे उसकी बहुत खिदमत कर रहे हैं, उसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हर रोज़ उसको गाली दूँ, उसके साथ एक बुरा रवैया अख्तियार करूँ, इससे ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये फ़ौरन इस बात को तस्लीम करेंगे कि यकीनन पड़ेगा। अब सूरत हाल क्या ये है? सूरत हाल ये है कि माँ के मामले में तो ये जज्बात मौजूद है, वहाँ अखलाकी सवाल पैदा हो जाता है, खुदा के मामले में मौजूद नहीं। यानी जो खालिक है आपका, जिसने आपको बनाया है, असल में वो खुदा के हवाले से सारे मामले को देख रही हैं, जबकि देखना तो असल में इंसान के हवाले से चाहिए। इंसान की हैसियत से मेरे अखलाकी वजूद का मतलब क्या है? मेरे अखलाकी वजूद का मतलब यह है कि मेरे जितने ताल्लुकात हैं उनको मैं वो हकीकी मर्तबा दूं जो मुझे देना चाहिए, ये मेरा शरफ है। यानी मैंने आप सर्च किया ना कि मेरी माँ और मेरे बाप दोनों को हो सकता है मेरी कोई ज़रूरत ना हो, किसी खिदमत की भी ज़रूरत ना हो, ऐसे दसियों माँ बाप होंगे, लेकिन बसीयत एक बेटे के मेरा एटीट्यूड, मेरा रवैया क्या होना चाहिए उनके बारे में बताया जाएगा ना कि मेरा रवैया उनके बारे में इज्जत का होना चाहिए, एहतराम का होना चाहिए, उनकी हैसियत के एतराफ़ का होना चाहिए, उनकी खिदमत का होना चाहिए, उनसे उसने सलूक का होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये अखलाकी तकाजा है या नहीं? तो अखलाकी तकाजा खालिक के बारे में कोई क्यों पैदा नहीं होगा? तो अगर कोई आदमी खालिक के बारे में ये राय कायम करता है कि उसका कोई और भी खालिक है या खालिक के साथ उसके मामलात में कोई और भी शरीक है, वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? अगर वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना इनके नज़दीक कोई बुराई है या नहीं? बहतान बांधना कोई बुराई है या नहीं? अगर कोई आदमी खड़ा होकर कल ये कहे कि मेरी जो असल माँ है इसको तो मैं कोई खास अहमियत देने के लिए तैयार हूँ, चार माएँ मेरी और भी हैं जिनको मैं माँ बना के रखने के लिए तैयार हूँ, क्या रवैया होगा इनका? तो असल में ये जो शिर्क का मामला है ये मेरे अखलाकी वजूद से पैदा होता है। अखलाकी वजूद का मतलब क्या है? गिरदो पेश में मेरे जितने रिश्ते और ताल्लुकात हैं मुझे उनका हक अदा करना है, तो खुदा का हक ये है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, जिस तरीके से माँ बाप का हक ये है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, ये खुदा का हक है। और ये हक मेरे हवाले से पैदा होता है, खुदा के हवाले से पैदा नहीं होता। खुदा की बड़ी इनायत है मुझ पर कि वो मुझे वालदैन के हुकूक भी बताता है, वो मुझे अज्जा अकरबा के हुकूक भी बताता है और वो मुझे अपने हुकूक भी बताता है।
असल में जब अपने हुकूक खुद बताता है तो वहां से ये ख्याल होता है इनको कि वो क्यों अपने बारे में ये हुकूक बताया।
बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वालदैन बच्चों को ये बताते हैं कि वालदैन के हुकूक क्या है। ये अपने बच्चों को बताएंगी ना, अपने बच्चों को बताएंगी कि देखो तुम्हारे वालदैन की हैसियत से मेरा क्या हक तुम पर कायम होता है, तुम्हारी माँ की हैसियत से क्या होता है, तुम्हारे बाप की हैसियत से क्या होता है। तो ये हुकूक बताने का काम, तालीम देने का काम है। तो खुदा जिस तरीके से हमारा खालिक है उसी तरीके से हमें तालीम भी देता है, ये उसने तालीम दी है। और ये कोई मामूली मसला नहीं है कि आप अपने सारे ताल्लुकात में हर जगह कहें मैं बहुत अच्छा हूँ। अब ये बहुत अच्छे आप कहाँ हैं? बहुत अच्छे आप इस दुनिया की ज़िंदगी में हैं। जिस वक्त ये पर्दा उठेगा और वो ज़िंदगी वजूद में आएगी और उसमें वो ताल्लुक जो खुदा का ताल्लुक है वो भी एक ज़िंदा हकीकत बन के सामने आ जाएगा। यूँ समझ लीजिए ना कि आपकी माँ और आपके बाप नहीं थे, वो वजूद पजीर हो गए। अब बताइए अखलाकी तकाजे क्या हैं? तो ये मेरा शरफ है कि मैं खुदा की तौहीद का इकरार करूँ, खुदा को इसकी कोई ज़रूरत नहीं।
اچھا وہ بات جو انہوں نے اس سے پہلے کہی تھی اپنے پہلے حصے میں کہ بھئی اس دور میں تو لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں جو غیب کی چیزیں ہیں، اس طرح کی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، نان بلیور ہوتے ہیں،
تھوڑا سا مبالغہ کیا ہے،
اتنا نہیں ہے ایسا،
بہت معذرت کے ساتھ مبالغہ کیا ہے، اس وقت دنیا کے اندر کروڑوں انسان ایسے ہیں، اربوں انسان ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں،
بلکہ زیادہ ماننے والے،
زیادہ ماننے والے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، اصل میں ہم جس حلقے کے اندر جی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بعض لوگوں کی باتوں کو ہم پوری دنیا کی بات سمجھ لیتے ہیں، دنیا کے اندر کروڑوں اربوں لوگ خدا کو ماننے والے ہیں، خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ابھی تو شرک کی بدترین قسمیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فرض کیجئے سارے کے سارے لوگ جو ہے سچ بولنے لگ جائیں، تو کیا جھوٹ کی کنڈیمنیشن اللہ کی کتاب میں نہیں ہونی چاہیے، بتایا جائے گا نا؟ تو یہ اصل میں اخلاقی حوالے سے مسئلے کو دیکھ ہی نہیں، میرے اپنے وجود سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مجھے یہ بتانا ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقی لحاظ سے میرے لیے شرمناک ہیں، مجھے اپنے ماں کو ماں کہنا چاہیے، باپ کو باپ کہنا چاہیے، مجھے اعزہ اقربا کو ان کا حق دینا چاہیے، اسی طریقے سے میرا ایک خالق ہے، مجھے اس کے بارے میں بھی صحیح تصور قائم کرنا چاہیے۔